नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये सम्मेलन देश के विकास पथ को दिशा देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी की प्रतिबद्धता मजबूत करेगा। ये पंचायत से लेकर संसद तक सभी स्तर तक शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर करेगा, साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का महत्व भी रेखांकित करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। सितंबर 2023 में संसद ने विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। ये अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इस महीने की 16 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में देश भर में महिला आरक्षण लागू करने पर मुख्य रूप से विचार होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश की महिलाओं से किए गए वायदे टालने की राजनीति नहीं बन सकते। श्री रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने का समय आ गया है तो कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है, जिसमें रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों और तत्काल आगे बढ़ने की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2029 से पहले देश की नारी शक्ति को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए परिसीमन से संबंधित संशोधन आवश्यक है। इसे और आगे अनिश्चितता में धकेला नहीं जा सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात और महाराष्ट्र के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल डॉक्टर बीआर अंबेडकर जयंती पर गांधीनगर के लोकभवन में सामाजिक समरसता महोत्सव में उपस्थित रहेंगी। इसके बाद वे गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि दलहन तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोनस नीति में एक रूपता रखने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा गया पत्र एक परामर्श है, निर्देश नहीं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव ने 9 जनवरी को इस बारे में राज्यों को पत्र लिखा था। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्यों को यह परामर्श देश की दीर्घावधि खाद्य और फसल सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। वे इस पत्र के बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के उल्लेख का जवाब दे रही थीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज बीरभूम और पश्चिम बर्धमान जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। वे आज दोपहर बीरभूम के सैंथिया में और इसके बाद खैरासोल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद पश्चिम बर्धमान जिले में और शाम को दुर्गापुर में श्री शाह की जनसभा होगी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आज राज्य के विभिन्न स्थानों में कई चुनावी रैलियां करेंगी। सुबह बीरभूम जिले के सूरी में उनकी जनसभा होगी। इसके बाद पूर्वा बर्धमान के गालसी में और फिर बांकुरा में जनसभा होगी। सुश्री ममता बनर्जी दोपहर बाद दुर्गापुर में चुनावी रैली करेंगी। अमरीका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता विफल होने के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है। दोनों पक्षों के बीच आगे वार्ता जारी रखने के बारे में भी कोई समय सीमा तय नहीं हो सकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका की नौसेना तुरंत हार्मोज जल डमरू मध्य को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि ईरान जल्द ही अमरीकी शर्तों पर बातचीत फिर शुरू करेगा। लोकप्रिय गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका निधन कल 92 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।